नारायण नारायण नारायण। आइए हम सब स्वामी जी और उनके साथ पधारे हुए स्वामी जी के ऐसे चरणों में पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ प्रणाम करते हैं। स्वामी जी की हम पर और प्रेम पूरी आश्रम पर पूरी कृपा है। स्वामी जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है। स्वामी जी बहुत ही सरल और सहज हैं। इनकी वाणी में इतनी मधुरता है कि अपने सुनने वालों को उनके दिलों पर उनकी वाणी की पूरी छाप पड़ जाती है। स्वामी जी इस आवासीय अपने सत्प्रता प्रचन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वामी जी के श्री चरणों में पुनः प्रणाम करता हूं। जय श्री कृष्ण।
Hey,
Krishna.
Govinda, Govinda, Hare Gopala, Radha Krishna.
Govinda, Govinda,
Hare Gopala, Radha Krishna.
Govinda, Govinda, Hare Gopala, Radha Krishna.
Govinda, Govinda,
Krishna,
Govinda, Govinda, Krishna,
Govinda, Govinda,
Krishna,
Govinda, Govinda, Krishna,
Govinda, Govinda,
Krishna, Govinda, Govinda, Krishna,
Govinda, Govinda,
Krishna,
Govinda, Govinda,
Krishna, Govinda, Govinda,
Hare Gopala, Radha Krishna,
Govinda, Govinda,
Hare Gopala, Radha Krishna,
Govinda, Govinda,
Hare Gopala, Radha Krishna,
Govinda, Govinda,
Hare Gopala, Radha Krishna,
Govinda, Govinda,
Krishna, Govinda, Govinda,
Krishna,
Govinda,
Govinda,
Krishna, Govinda, Govinda,
Krishna,
Govinda,
Govinda,
Krishna, Govinda, Govinda,
Krishna,
Govinda,
Govinda,
Satchidananda Bhagavan ki, Satya Sanatana Dharma ki, Sadguru Deva Maharaj ki, Gopal Krishna Bhagavan ki, Shruti Maya ki, Om Namah Parvati Pataye,
अध्यात्म तीर्थ स्वरूप प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन के अधिष्ठात्री देव परम सद्गुरुदेव ब्रह्मलीन महाराज श्री जी के अव्यक्त स्वरूप को कोटि से वंदन। इस पवित्रतम संस्था की संचालिका कमेटी के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, अनवरत रूप से चल रहे सत्संग ज्ञान प्रवाह में प्रतिदिन अवगाहन करने के लिए पधारने वाले सभी श्रोतृवृंद, ये ज्ञान गंगा प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन में अनवरत रूप से चल रही है। आप ऐसे भाग्यशाली साधक हैं जिन्हें प्रतिदिन यहां पर इस ज्ञान गंगा में डुबकियां लगाने का एक अवसर प्राप्त होता है। आप लोगों ने देखा होगा, लोग अपने पुण्य कमाने के लिए तीर्थों में स्नान करने के लिए जाते हैं और तीर्थों में स्नान करके वहां के जो पंडित पुजारी आदि होते हैं उनके द्वारा आप पूजा प्रतिष्ठा आदि करवाते हैं, दान पुण्य करते हैं, कोई संकल्प करते हैं, एक अच्छा कर्म करके उनके माध्यम से और लौट करके आ जाते हैं। तीर्थों में देखते हैं कि वो तीर्थ वहीं रहते हैं और तीर्थों के पंडे पुजारी जो होते हैं वो भी वहीं रहते हैं, परमानेंट होते हैं। जब भी आप जाएंगे आपको तैयार मिलेंगे, लेकिन यात्री जाते हैं और अपना काम करके वापस लौट आते हैं। कितने यात्री उस घाट पर जाते हैं, कितने स्नान करते हैं, कितने पूजा प्रतिष्ठा करवाते हैं, लौट आते हैं, लेकिन हमारे मनीषियों ने, महान पुरुषों ने
ब्रह्मलीन महाराज श्री जी के संकल्प से एक ऐसा तीर्थ प्रेमपुरी में तैयार किया जो ये अध्यात्म तीर्थ ये स्थान तीर्थ यहीं का यही है। विलक्षणता है तो ये है कि यहां के जो यात्री है वो भी यहां के यही है। थोड़ा अंतर है तो इतना है कि पंडित पुजारी आते और चले जाते हैं, उल्टा हो रहा है। एक कल गए आज दूसरे आ गए 15 दिन के बाद और कोई तैयार बैठे होंगे। तो यात्री कितने भाग्यशाली हैं कि कहीं आना जाना नहीं, घर से उठो किसी ज्ञान गंगा में ना हो और चल करके वापस अपने घर में प्रतिदिन अवगाहन करो। क्रमशः सत्संग का प्रभाव चल रहा है, जुदा जुदा विषयों के पुस्तकों के ग्रंथों के प्रसंगों के माध्यम से कुल मिलाकर के ज्ञान गंगा में ही आप लोग नहा रहे हैं। चाहे उपनिषद के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे गीता के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे पंचदशी हो या ब्रह्मसूत्र हो, यहां की जो मुख्य प्रवचन धारा है वो है वेदांत मुख्य रूप से। और वेदांत का अर्थ ही होता है वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम शारीरकम च। उपनिषद वेदांत का ही नाम है। इस बार का जो हमारा विषय होगा वो सीधा डायरेक्ट उपनिषद रहने वाला है। देखो एक महज संयोग है, यद्यपि गत वर्ष के प्रवचन में भगवद गीता का 15वां अध्याय चल रहा था और संभवतः 5वां श्लोक तक हुआ था, एक रोज चिमन भाई ने फोन किया कि स्वामी जी इस बार विषय में क्या लेंगे आप। तो मैंने कहा कि मुझे गत वर्ष की इस समय स्मृति नहीं है क्या विषय मैंने वहां लिया था, तो आप देखना दिनकर को पूछ लेना कि गत वर्ष क्या चल रहा था, अरे अधूरा है तो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो चिमन भाई कहने लगे स्वामी जी ईशावासीय उपनिषद लिख दूं। मैंने कहा आपकी इच्छा लिख दो, जो भी लिखना है मुझे तो करना है। तो एक संयोग था कि ईशावासीय उपनिषद का विचार मंथन ईश्वरी इच्छा से ही हमारे सामने आया है। यद्यपि 15वां अध्याय का अवशेष था लेकिन आप मिश्री को किसी भी कोने से खाइए वो मीठी ही लगेगी। इस वेदांत को आप किधर से भी सुनिए, चाहे उपनिषद के माध्यम से सुनिए, ब्रह्मसूत्र के माध्यम से अथवा गीता के माध्यम से श्रवण करिए, ये तो जीवन कल्याण करने वाला ही है, जीवन को आनंद देने वाला ही है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम शारीरकम च। वेदांत नाम ही उपनिषद का ही होता है और उपनिषद एक ऐसी अद्भुत विद्या का नाम है जो हमारे जीवन में फलीभूत हो गई तो 3 काम एक साथ हो जाएंगे, विशरण गति और अवसाधन। ये वेदांत उस ब्रह्म विद्या का नाम है, जो ब्रह्म विद्या साधक के जीवन में आ जाए चरितार्थ हो जाए तो 3 अद्भुत चमत्कार उसके जीवन में होंगे। विशरण होगा, गति होगी, अवसादन होगा। विशरण शब्द का अर्थ होता है विनाश। क्या वेदांत सुनने वाले का विनाश होगा? आत्मा का तो कभी भी काल में विनाश संभव ही नहीं है, विनाश कैसे हो जाएगा? तो विनाश किसका होगा? ये ज्ञान एक ऐसी विद्या है जो अपने आप को अविनाशी रूप से हूं इस बात को भूला हुआ था, मैं अकर्ता अभोक्ता हूं इस बात को अनादिकाल से भूला हुआ था, मैं एक शाश्वत सत्य हूं इस बात को अनादिकाल से भूला हुआ था, अपने स्वरूप की विस्मृति की जो हेतुभूता अविद्या थी ये वेदांत ज्ञान उस अविद्या का नाश कर देगा, अज्ञान अंधकार को मिटा डालेगा। तो अद्भुत विद्या है ये जो अविद्या का नाश करने वाली है। कब से अविद्या चली आ रही है, कब से इसका साम्राज्य था, अगर आप इतिहास खोजने के लिए चलो तो कहीं पर भी इसकी शुरुआत आपको मालूम नहीं पड़ेगी। इतना प्राचीनतम अज्ञान अविद्या अंधकार है जिसको मिटाने का एक ही मात्र साधन है ये वेदांत विद्या। इसलिए पहली विशेषता है इस उपनिषद की, इस वेदांत विद्या की, इस ब्रह्म विद्या की, कि वो अज्ञान को अविद्या को नाश करती है, विशरण और गति। दूसरा इसका प्रभाव होगा गति मानी प्राप्ति अवगति होगी। जो ही अविद्या का नाश होगा तत्काल उसी समय अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी, मैं कौन हूं ये बात समझ में आएगी, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पुराने लोग भजन गाया करते थे जब फिल्में नहीं चलती थी, आजकल के भजनों का रूप बदल चुका है। इसलिए जो मेरा सच्चित आनंद स्वरूप है, अकर्ता अभोक्ता स्वरूप है, जो मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, अहम ब्रह्मास्मि, विगत स्वाध्याय क्लास में आप चारों महावाक्यों का विचार सुन रहे थे ना, जिन महावाक्यों ने अपने स्वरूप का ब्रह्म रूप से निश्चय करवाया है, तत्वमसी महावाक्य से उपदेश दिया है, अहम ब्रह्मास्मि में अनुभूति की है, उस अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप की उपलब्धि प्राप्ति अविद्या नाश के साथ ही साथ हो जाएगी, इसलिए अपने आप को प्राप्त करवा देती है। उसका फल क्या होगा, अपने आप को जान लिया, अपने आप को प्राप्त कर लिया है, फिर क्या मिलेगा, कोई अवार्ड मिलेगा हमें, उसका परिणाम क्या होगा। उसका बहुत बड़ा ये विद्या परिणाम सामने लाती है। अनादि काल से संसार में जीव का जो आवागमन चल रहा था, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खुल दोस्तारे, ऐसा जो ये संसार है जिसमें बार 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 जन्मना बार बार मरना, जायस्व मरियस्व जायस्व मरियस्व, यहां कर्म करो फल भोगने के लिए जन्म लो, फिर कर्म का फल भोगो, फिर मर जाओ, फिर अनुशय लेकर के आगे गए, फिर कर्मों का फल भोगो। अनादि काल से संसार चक्र में जो पड़ा हुआ जीव है, ये बार बार का जन्म मरण, आप जानते हैं संसार का पहला कोई दुख है तो जन्म दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवद्गीता में भगवान कहते हैं देखो इन दुखों का अनुदर्शन करो, बार बार तब समझ में आएगी कि कितने पीड़ा वो पीड़ा भोगनी पड़ती है। जन्म दुख होता है, जरा दुख होता है, और जिंदगी में बीच में कोई पूरी शांति नहीं है, कहीं बुढ़ापे का दुख है तो कहीं रोग का दुख है, और अंत में मरण का दुख तो है ही है। इस प्रकार के जन्म दुख, व्याधि दुख, जरा दुख और मरण दुख, ये जितने भी जन्म मरणात्मक दुख हैं, बार बार जन्मना और मरना, जो ही अपने स्वरूप की अनुभूति हुई, अपने को ब्रह्म के रूप में निश्चय किया है, बस उसकी स्थिति होगी यथोदकम शुद्ध शुद्ध मासिकम ताद्रगैव भवति एवं मुनेर विजानत आत्मा भवति गौतम। कठश्रुति में महाराज यमने नचिकेता को कहा कि जिस समय ये अपने से आपको जान लेता है तो कैसी स्थिति हो जाती है, यथोदकम शुद्धे शुद्ध मासिकतम तादृके व भवती, जैसे शुद्ध पानी में शुद्ध पानी मिला दीजिए तो जिस पानी को मिलाया गया और जिस जल में मिलाया गया उन दोनों में भेद क्या रहेगा, दोनों ही शुद्ध हैं। जिस जल में डाला गया वो भी बिल्कुल निर्मल जल है, और जिस जल को विलय किया जा रहा है वो भी एकदम निर्मल जल है, दोनों एक ही तत्व है। किसी पात्र को लेकर के जुदा जुदा मालूम पड़ रहे थे, बीच में जो आवरण था, बीच में जो पर्दा था, परत थी, आवरण था, उसको हटा दिया गया तो दोनों पानी कैसा हो जाएगा, वो एक ही हो जाएगा। यथोदकम शुद्ध शुद्ध मासिकतम, जैसे शुद्ध पानी में शुद्ध पानी को मिला दिया जाए, तादृगैव भवति, वो वैसा ही हो जाता है जैसे शुद्ध पानी पहले था, मिलाया गया भी शुद्ध हो जाता है। एवं मुनेर विजानत आत्मा भवति गौतम। ठीक इसी प्रकार से जिन्होंने प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन में बैठ करके निरंतर अपने स्वरूप का आत्मा का मनन किया है, श्रवण के साथ साथ में मनन होना बहुत जरूरी है। केवल एक घंटा श्रवण कर लिया और 23 घंटा हमारा अन्य व्यवहार में जा रहा है, ये भी पता नहीं कि कल क्या सुन रहे थे, इतना भी मनन नहीं हुआ कि कल कहां छूटा था, कहां से उठाया गया था, तो फिर ठीक है, श्रवण का लाभ होगा। कुछ नहीं होने से कुछ होना ठीक है, थोड़े संस्कार तो बनेंगे, लेकिन अधिक लाभ होगा जब सुने गए का हम लोग मनन करें, पुनः पुनः उस पर चिंतन करें, उसका विचार करें, उसकी आवृत्ति करें कि ये बात किस दृष्टि से कही गई है, तर्क के साथ में उसका मनन होना चाहिए, विचार करके मनन होना चाहिए। जैसे मार्केट में कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, तब आजकल मार्केट में किसी भी वस्तु की शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है कि ये वस्तु शुद्ध ही हो, तो एक अच्छा कुशल ग्राहक होगा, वो लेने से पहले उस चीज को अच्छी तरह से देखने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, कहीं इसमें कोई खोट तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, कोई मिलावट तो इसमें नहीं आ गई है। तो जैसे बाह्य वस्तु को लेता है, लेने के बाद पर भी बार बार विचार करता है ये कैसी है, कोई कमी तो नहीं, धोखा तो नहीं हो गया है। ऐसे ही जैसे मार्केट की वस्तु में आप चिंतन विचार करते हैं, इस अध्यात्म मंच के द्वारा जो विद्या ब्रह्म विद्या प्राप्त हो रही है, उसमें जो तर्क वितर्क दिए जाते हैं अपने स्वरूप का निश्चय कराने के लिए, अनात्मा को जो अध्यास बैठा हुआ है उसको दूर करने के लिए, और जो आत्मा है उस स्वरूप को निश्चय करने के लिए, जितना भी शास्त्रों में चिंतकों ने महापुरुषों ने अपने लेखनी के द्वारा मंथन किया है, वो जब मंच के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उस पर एक अच्छे श्रोता को बार 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 उसका मंथन, उसका चिंतन, बार बार मनन करते रहना चाहिए, तब जाकर के फिर वो चीज बहुत दृढ़ होती है, उसका प्रभाव जीवन में एक अस्थायी रूप से आता है। इसलिए ऐसी विद्या है, जिस विद्या को सुनो और सुनने के बाद बार बार उसका मनन करना चाहिए, मनन जो करता है उसी के जीवन में ये विद्या फलीभूत होती है। तो यही कारण है कि विद्या अविद्या का नाश करेगी, अपने स्वरूप की उपलब्धि करवाएगी, और साथ ही साथ है जो जन्म मरण का एक क्रम चल रहा था, एक प्रवाह चल रहा था, बस उसको वहीं परिविराम दे डालेगी। मिश्रण गति और अवसाधन, तीन अर्थ में ये विद्या काम आती है। ऐसी विद्या है उपनिषद विद्या, जिसको इस मंच से हम लोग विचार करने के लिए यहां पर प्रस्तुत हैं, उपस्थित हुए हैं। विचार आया था जैसे अभी सुन रहे थे कि ईशावासीय उपनिषद पर इस बार चिंतन किया जाए। देखो, यद्यपि हमारी जो वेद राशि है बड़ी विस्तृत वेद राशि है, आप दैनिक श्रोता हैं, आप सबको मालूम है जो हमारे वेद शास्त्र हैं, चार वेद, ऋग, यजु, साम और अथर्व वेद, और चारों वेदों की जो शब्द राशि है उनके टोटल मंत्रों को गिनते हैं, तो धारणा है कि मंत्र 1,00,000 मंत्र होते हैं। सारे के सारे वेदों के मंत्रों को मिलाया जाए तो 1,00,000 मंत्र होते हैं, और उन 1,00,000 मंत्रों में भी सर्वाधिक जो मंत्र आते हैं वो कर्मकांड विषयक मंत्र होते हैं। कर्मकांड विषयक मंत्र का मतलब 80,000 मंत्र तो कर्मकांड के ही होंगे कि आप ऐसा कर्म करो, इस कर्म को करने से आपको यह फल प्राप्त होगा। अब कर्म के 2 विधा होगी, एक तो लौकिक और पारलौकिक फल को प्राप्त करवाने की करने वालों की जो स्थिति है कि इस लोक का अमुक लौकिक फल मुझे प्राप्त हो या पारलौकिक फल मुझे प्राप्त हो, देवत्व आदि की पद की प्राप्ति हो, उस कामना से जो कर्म कर रहे हैं, चाहे यहां का कोई फल प्राप्त करना हो, धन स्त्री पुत्र मान सम्मान आदि, उसके लिए भी कर्म होते हैं, और परलोक में भी देवत्व पद आदि की जो प्राप्ति है उसके लिए भी कर्म होते हैं। वो जितने भी कर्म है फल को देने वाले बताने वाले वो कर्म कांडात्मक मंत्र है। वो मंत्रों की संख्या बताई जाती है 80,000। दूसरे 16,000 मंत्र वेद राशि के उपासना संबंधी मंत्र हैं। उपासना संबंधी मंत्र जो हमारे चित्त की स्थिरता के लिए बहुत आवश्यक है। देखो किसी भी कर्म को करो तो भी चित्त की स्थिरता होनी चाहिए और परमात्मा की प्राप्ति का अभ्यास करो तो भी चित्त की स्थिरता होना चाहिए। इस लोक में शांति की चाहना करते हो तो भी चित्त की स्थिरता की आवश्यकता होती है। जिनका चित्त स्थिर नहीं होता है उनको रात को नींद भी ठीक से नहीं आती है, बड़े परेशान होते हैं बेचारे, गोली खा करके सोना पड़ता है। इसलिए उपासना चित्त को स्थिर करने में बहुत बड़ा एक अचूक औषधि है, उपाय है, एक साधन है। 16,000 मंत्र उसके बताए गए और शेष जो 4,000 मंत्र हैं उनको उपनिषद माना जाता है, उनको वेदांत माना जाता है, उसको ब्रह्म विद्या के नाम से जाना जाता है। ये 4,000 मंत्र वेद के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब संख्या की दृष्टि से वेद राशि पर ध्यान देवें तो 80,000 मंत्र और 16,000 मंत्र और 4,000 मंत्र, आप संख्या को देखिए, महत्वपूर्ण 4,000 मंत्र है। लेकिन इन मंत्रों को यथावत समझने और इस स्थिति पर पहुंचने के लिए पहले 16,000 मंत्रों का पालन करना होगा। इसका अर्थ हुआ कि 4 गुना उपासना करो तो 1 तत्वज्ञान की योग्यता आएगी। सब में 4-4 गुना अंतर है, आप देख लीजिए। 4,000 मंत्र ज्ञान के हैं तो उसे 4 गुनी उपासना करनी पड़ेगी ज्ञान के लिए। 16,000 मंत्रों से साधना करनी होगी और 16,000 मंत्रों से उपासना की योग्यता के लिए उसके 4 गुने कर्मकांड करके चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। 80,000 मंत्र 16 का 4 गुना 80,000 होगा, ये 80 होगा कि नहीं? तो इस प्रकार से आप देखिए, माने हमारे जो अंतकरण में मल दोष हैं उसकी निवृत्ति करने के लिए पहले कर्म बताए गए हैं 80,000 मंत्र। अंतकरण में जो चांचल्य दोष होता है उसके निवारण के लिए 16,000 मंत्र उपासना के दिए गए हैं। जब मल और विक्षेप दोनों ही दोषों की निवृत्ति इस कर्म और उपासना के माध्यम से हो जाती है तब तृतीय श्रेणी आती है ज्ञान कांड की। इस ज्ञान कांड के जो 4,000 मंत्र हैं, जो अविद्या का आवरण है, अज्ञान का आवरण है, उस आवरण को भंग करने में काम आएंगे ये 4,000 मंत्र। इस प्रकार से जो ये उपनिषद विद्या है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि जीवन में पूरा का पूरा वेद बहुत उपयोगी है क्योंकि कर्म कांड के बिना चित्त की शुद्धि नहीं है और उपासना के बिना चित्त की स्थिरता नहीं है। और जिस चित्त की शुद्धि न हो, जिस चित्त की स्थिरता न हो, जब भी देखो स्वरूप का साक्षात्कार होगा तो किसमें होगा? जैसे हम लोग आईने में अपने शक्ल देखते हैं तो आईना ही नहीं होगा तो अपनी शक्ल कैसे दिखाई पड़ेगी? अरे भाई सामने आईना नहीं, चलो पानी है तो पानी भरा हुआ उसमें भी व्यक्ति अपनी शक्ल को देख सकता है। लेकिन पानी भी यदि साफ नहीं है, पानी भी यदि स्थिर नहीं है तो क्या उसमें अपनी शक्ल देख सकते हैं? जब कभी भी आत्म साक्षात्कार होगा ना तो आत्म साक्षात्कार भी भीतर ही में होगा, अनुभूति भी भीतर में ही होगी। जिस मन जिस बुद्धि के द्वारा हम चिंतन करते हैं वहीं पर आत्मा का साक्षात्कार होना है। आपने कठश्रुति में सुना होगा, दृश्यते तुग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। हमारा जो अंतकरण है, हमारा मन है, बुद्धि है, इसको इतना सूक्ष्म कर लिया जाए, इतना सूक्ष्म कर लिया जाए इसमें कोई दूसरी चीज रह ही न सके। फिल्टर करते जाओ, कोई भी कचरा है उसको हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ और मन बिल्कुल उस शुद्ध निर्मल जल की तरह हो जाए या एक स्वच्छ आईने की तरह हो जाए, तब आप देखिए उसके सामने अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाएगी। इसलिए चित्त की उस स्थिति को पाने के लिए कर्म उपासना एक आवश्यक साधन है, और जिन्होंने कर्म और उपासना को किया है अब उनका आवरण भंग करने के लिए, अविद्या को नाश करने के लिए उपनिषद के मंत्रों का चिंतन होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से हमारी संपूर्ण वेद राशि, अब ये जो चारों वेदों के 100,000 मंत्रों की वेद राशि है, उसमें भी प्राय प्राय वेद राशि को फिर दो भाग में विभक्त किया गया है। मनुष्यों ने विचार करके कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो उपनिषद के केवल मंत्र भाग में आते हैं, जिसको संगीता भाग बोलते हैं, और कुछ अन्य ऐसे मंत्र हैं जो ब्राह्मण भाग के अंतर्गत आते हैं। दो भाग प्रमुख उसमें है, यद्यपि आरण्यक और उपनिषद भाग को करके और भेद कर देते हैं, किंतु दो भाग प्रमुख रूप से है, ये मंत्र भाग और संगीता भाग। अब उसमें भी वेद के अंदर जो मंत्र भाग माना गया है उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। ब्राह्मण भाग के बजाय जो संगीता भाग या मंत्र भाग एक ही अर्थ में आता है, संगीता कहो या मंत्र कहो, ये संगीता और मंत्र भाग वेद का बहुत प्रामाणिक और महत्वपूर्ण भाग है। हालांकि ब्राह्मण भाग को लेकर के मनुष्यों में बड़ा विवाद भी रहा, कई लोग तो कहते हैं जो वेद के ब्राह्मण भाग के मंत्र होते हैं वो मूल वेद है ही नहीं, ऐसी धारणा भी होती है, आर्य समाज आदि ने ऐसा ही माना। लेकिन जो मंत्र भाग है वो सबके लिए प्रामाणिक है, उसमें किसी को संदेह नहीं होता है कि ये प्रामाणिक है कि नहीं है। अब मंत्र भाग की यदि कोई उपनिषद मिल जाए तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, और उन मंत्र भाग की उपनिषदों में ये जो हमारी उपनिषद जिसके ऊपर हम लोग विचार करने जा रहे हैं, ईशावास्य उपनिषद, ये अत्यंत महत्व की इसलिए भी है कि ये मंत्र भाग माने संगीता भाग की उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद की का सीधा सीधा डायरेक्ट 39वां अध्याय है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह संगीता भाग की उपनिषद है। वैसे उपनिषदों की संख्या बहुत मानी जाती है, वेद की जो शाखा क्रम होता है उन शाखाओं में ऐसी मान्यता है कि चारों वेदों के मिलाकर के 1180 शाखाएं होती है, और जितनी शाखा होती है प्रत्येक शाखा के अंत में एक एक उपनिषद मानी जाती है। तो प्रत्येक शाखा के अंत में एक ब्रह्म विद्या एक उपनिषद आती है, इसका मतलब 1180 शाखाएं हैं, तो उपनिषद में 1180 ही होगी, उसमें भी 1000 उपनिषद तो सामवेद की ही मानी जाती है। अब इतनी जो ये सारी उपनिषदें होती हैं 1180 शाखाएं, यद्यपि उनकी सारी उपनिषदें आज उपलब्ध नहीं है, इस काल प्रभाव में कितने सारी उपनिषद विद्याएं लुप्त हुई हैं, परंतु आज भी करीब करीब 100-150 उपनिषदें मिल जाती हैं, और उनमें भी जितने 100-150 उपनिषद प्राप्त होती हैं टोटल प्रामाणिक है यह कहना बड़ा कठिन काम है। कितनी उपनिषदें प्रामाणिक हैं, कितने प्रशिक्त हैं, ऊपर से थोपी हुई हैं, ये निर्णय करना बहुत कठिन है। कई लोगों ने ऐसा भी किया है कि इस उपनिषद विद्या का बहुत महत्व होने के कारण अपने द्वारा लिखी गई पुस्तकों को भी उपनिषद संज्ञा दे दी। मैंने सुना था महाराज श्री जी साधना सदन के संस्थापक गुरुदेव सुनाया करते थे कि अकबर के टाइम पर किसी एक व्यक्ति ने उपनिषद लिखी, जिस उपनिषद का नाम रखा अल्लो उपनिषद, उस उपनिषद का नाम रखा अल्लो उपनिषद। उपनिषद बड़ी प्रसिद्ध विद्या थी, महत्वपूर्ण विद्या थी, तो श्रेष्ठ नाम रखने से पीछे कौन रहेंगे। तो अब बताइए अल्लो उपनिषद कोई शाखा की उपनिषद नहीं हो सकती, लेकिन लोगों ने महत्व का प्रसंग होने के कारण उसके साथ में उपनिषद संज्ञा जोड़ दी, तो ऐसे मान लेते हैं। अब 150 उपनिषदों में भी कितनी प्रामाणिक है यह कह पाना बहुत कठिन है, किंतु जिन उपनिषदों को हमारे आचार्यों ने प्रमाणित किया है वो बड़ी महत्व की मानी जाएगी, और आचार्यों ने जो प्रमाणित किया उसमें 10-11 उपनिषद तो अत्यंत ही प्रामाणिक है। आदि जगतगुरु भगवान शंकराचार्य महाराज ने जिनके ऊपर भाष्य लिखा है उन उपनिषदों की प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं है, उसके अलावा कई ऐसी उपनिषद भी है जिन पर संपूर्णतया आचार्य ने भाष्य न भी लिखा हो लेकिन अपने भाष्य प्रकरणों में तत्तद मंत्रों में जहां आवश्यकता लगी उन उपनिषदों के मंत्रों का उदाहरण दिया है, उनको प्रमाणित किया है, उस प्रसंग को उठा करके लिखा है। जैसे उदाहरण के लिए कौशित की उपनिषद होती है, अब कौशित की उपनिषद पर आचार्य ने कहीं भाष्य नहीं लिखा है लेकिन भाष्य प्रकरणों में जहां आवश्यकता पड़ी वहां के मंत्र उठा करके आचार्य ने डाले। तो जिन उपनिषदों पर भाष्य लिखा है आचार्य ने और जिन भाष्य के मध्य अन्य उपनिषदों के उदाहरण दिए गए हैं उनकी प्रामाणिकता में तो कोई संदेह नहीं हो सकता है। ये बहुत महत्व की उपनिषदें होती है और उनमें भी उदाहरण की बजाय जिन पर भाष्य लिखना आचार्य ने बड़ा महत्व का कार्य समझा, अनिवार्य समझा, वो उपनिषदें और भी कितनी प्रामाणिक होगी। ऐसी उपनिषदें हैं वो 10 उपनिषदें हैं, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैतरीय, छांदोग्य और वृद्धारण्यक उपनिषद। ये 10 उपनिषद है जिन पर आचार्य शंकर ने भाष्य लिखा है। यद्यपि 11वें उपनिषद भी में भी भाष्य मिलता है, वह है श्वेताश्वतर उपनिषद। किंतु मनुष्यों में इसके प्रति थोड़ा संदेह होता है कि ये जो आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य महाराज हुए हैं उनका शायद ही भाष्य हो, उसको इतना महत्व नहीं देते। कारण आप जानते हैं जब लेखक बदल जाता है तो उस लेखने का जो विषय है उसकी शैली भाषा बदल जाती है। 10 उपनिषद की जो शैली है उसकी और 11वां उपनिषद जो श्वेताश्वतर उपनिषद है उसकी शैली को आप लोग भी पढ़ोगे तो साफ साफ मालूम पड़ेगा कि इनके लेखक कोई अलग है। आचार्य शंकर ने जहां तक उपनिषद भाष्यों में श्रुति और स्मृति का उदाहरण दिया है, पुराणों का उदाहरण नहीं दिया है। आप देखिएगा गीता आदि स्मृतियों को लिया है लेकिन पुराणों का प्रसंग आचार्य ने कहीं लिया नहीं है। व्यास महाराज ने जो पुराण लिखे हैं लेकिन 11वें उपनिषद का यदि भाष्य देखें आप तो विष्णु पुराण आदि के कितने सारे प्रमाण दिए हैं उसके अंतर्गत। इसलिए लोग संदेह करते हैं कि कोई जो प्रवर्ती शंकराचार्य हुए हैं बाद में आए हैं उन शंकराचार्यों के द्वारा शायद लिखी गई है लेकिन वो भी तदगद्दी में बैठे हुए हैं तो उसको शंकराचार्य भाष्य बोल सकते हैं लेकिन मूल जो प्रमाणिक उपनिषदें हैं वो 10 उपनिषदें हैं। अब 10 उपनिषदों में भी जैसा कि मैं आपको निवेदन कर रहा था कि मंत्र भाग की उपनिषद और ब्राह्मण भाग की उपनिषद, इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है मंत्र भाग की उपनिषद जिसको आचार्य ने सबसे पहले लिया है। अपने भाष्य क्रम में जहां स्वाध्याय क्रम चलता है वहां पर भी ईशावास्य उपनिषद के क्रम से ही पाठ शुरू होता है। ईशावास्य के बाद में केन आता है, परिकट आता है, ये क्रम चलता है, फिर प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य का क्रम आगे बढ़ेगा। इसलिए महत्वपूर्ण उपनिषद है ये ईशावास्य उपनिषद। प्रत्येक उपनिषद का जो नामकरण हुआ है उस नामकरण की दृष्टि से देखते हैं अधिकांश ऐसी उपनिषदें हैं जो उसके प्रथम शब्द को लेकर के उसे नाम कर दिया जाता है अथवा कुछ ऐसी उपनिषदें हैं जो उनके प्रसंग को लेकर के किस प्रसंग से उसका आरंभ हुआ है उसको लेकर के उसका नामकरण संस्कार हो जाता है। कुछ ऐसी उपनिषदें हैं जो कलेवर आदि की दृष्टि से उसका नाम रखा जाता है। अब आप देखिए 10वीं उपनिषद आती है बृहदारण्यक उपनिषद। सचमुच में जैसा उसका नाम है वैसा ही उपनिषद का कलेवर है। बृहत का अर्थ क्या होता है? बड़ा। और आरण्य का मतलब क्या हुआ? अरण्य भव, आरण्यक। अरण्य बोलते हैं बहुत बड़े वन को, जंगल को। तो जंगल कितना बड़ा विस्तृत होता है और जंगल में कोई पश्चिम आए तो बाबा उसका निकलना भी आसान नहीं है, और छोर दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे वृद्धारण्यक उपनिषद में फंसे हो कि नहीं? कभी स्वाध्याय क्रम में नहीं चला? कितने साल में निकले होंगे? ये सोचा होगा कि जिंदगी पूरी कर देंगे महात्मा लोग इसके अंदर, इतना बड़ा कलेवर है। तो आकार की दृष्टि से, कलेवर की दृष्टि से भी नाम हो सकता है। कई उपनिषद ऐसे भी आती हैं जो लाक्षणिक होती है। मुंडकोपनिषद आती है, वो लाक्षणिक है, प्रश्नोपनिषद आती है वो लाक्षणिक है, जहां प्रश्नों के द्वारा ही उसका प्रारंभ हो रहा है तो लाक्षणिक है, या कहीं प्रथम शब्द को लेकर के देखो केनो उपनिषद आया, केनो उपनिषद में जो प्रश्न खड़ा किया केने शिकम पतति प्रेषितम मन केन प्राण प्रथमाई प्रेति युक्त है, केन शब्द से ही उस उपनिषद का आरंभ होने के कारण नाम ही रख दिया केनो उपनिषद। ठीक इसी प्रकार से जिस उपनिषद के ऊपर हम लोग विचार मंथन करने जा रहे हैं वो उपनिषद यह है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद में भी ईशा शब्द के द्वारा ही इस उपनिषद का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इस उपनिषद का नाम रखा गया है ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्य शब्द के द्वारा ही इसका प्रारंभ हो रहा है, कारण यही है इसमें ईशावास्य उपनिषद नाम देने का। कलेवर की दृष्टि से देखते हैं तो उपनिषद कोई बहुत बड़ी नहीं है, सभी श्रोताओं के लिए कंठस्थ करना भी सुलभ है, बहुत आसान है। केवल इसमें 18 मंत्र है। देखो जब भगवद गीता के 12वां अध्याय के 20 श्लोक याद किए जा सकते हैं, जब 15वां अध्याय के 20 श्लोक कंठस्थ किए जा सकते हैं, तो ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्रों को कंठस्थ करना मुझे नहीं लगता कि बड़ा कोई कठिन काम हो, बल्कि 2 मंत्र कम ही है, आसानी से इस उपनिषद को कंठस्थ किया जा सकता है। और ऐसी उपनिषद है, आप ताजुब करेंगे जब इसके अंदर हम घुस करके देखेंगे तो हमारा जितना बड़ा बड़ा जो ये स्मृति शास्त्र है, इतिहास ग्रंथ है, उन सब का मूलभूत है तो ईशावास्य उपनिषद है। महाभारत, इससे बड़ा कोई स्मृति ग्रंथ कोई है, इतिहास ग्रंथ कोई है? जितने मंत्र वेद में माने गए हैं उतने के उतने श्लोक महाभारत के अंदर व्यास जी ने डाले। 1,00,000 श्लोकों का जो महाभारत लिखा है, ये समझ लो कि वो पूरा का पूरा महाभारत ग्रंथ है, ईशावास्य उपनिषद के भीतर से निकल करके बाहर आया है। आप देखिएगा उसका परम मूल है ईशावास्य उपनिषद। जैसे महाभारत में 2 पक्ष काम कर रहे हैं, कौरव पक्ष और पांडव पक्ष, इस उपनिषद के अंदर भी आप देखोगे 2 पक्ष प्रमुख रूप से लिया गया है। पांडव पक्ष ज्ञान मंत्रों का प्रतीक है और कौरव पक्ष कर्म मंत्रों का प्रतीक है। इस प्रकार से दोनों पक्ष लिए गए हैं। दोनों सेनाओं में प्रमुख प्रमुख जो योद्धा और व्यक्ति गिने जाते थे उनमें 7 व्यक्ति प्रमुख रूप से पांडव पक्ष में गिने जाते हैं, 11 व्यक्ति कौरव पक्ष में माने जाते हैं। और इस उपनिषद के अंदर भी मैं जब प्रसंग चलेंगे तब आपको निवेदन करूंगा, यहां पर भी आप देखिएगा 7 प्रमुख मंत्र कर्म के प्रतीक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं, और 11 जो मंत्र आए हैं वो यहां कर्म के प्रतीक आएंगे। माने दोनों पक्ष लेकर के चले हैं ईशावास्य उपनिषद में, और उन्हीं का विस्तार देखना है तो पूरा महाभारत पढ़िएगा। अब महाभारत में उलझने की बजाय इतना अच्छा होगा कि केवल इन 18 मंत्रों में सारे महाभारत में जो लिखा गया है उसके परम मूल को हम जान लें। अब पत्ते पत्ते पर चलने की बजाय कितना अच्छा कि मूल को पकड़ लें। तो ये उपनिषद है मूलभूत उपनिषद, कितनी सारी इसकी विशेषताएं हैं। कलेवर की दृष्टि से बहुत छोटी उपनिषद है, महत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंत्र भाग की उपनिषद है, और आधार की दृष्टि से देखो तो महाभारत ग्रंथ जैसे ग्रंथ कया बीजभूत उपनिषद है, आधारभूत उपनिषद है, ऐसे महत्वपूर्ण उपनिषद को विचार करने के लिए हम लोग यहां पर प्रवृत्त हुए हैं। एक चीज और देखनी है हमें यहां पर कि किसी भी वेद विद्या को जब प्रारंभ करते हैं तो उसके प्रारंभ में मंगलाचरण का विधान आया है। आप कोई भी ग्रंथ उठाइए, महापुरुषों ने सर्वप्रथम मंगलाचरण किए हैं, इस उपनिषद में भी मंगलाचरण हुआ है, क्योंकि वेद उपनिषद विद्या को प्राप्त करने के लिए मंगलाचरण की अत्यंत आवश्यकता है। शांत चित्त होकर के उसको श्रवण करना पड़ता है। आचार्य शंकर ने भाष्य में एक जगह बात लिखी है, संभवतः कठभाष्य में लिखा होगा कि शांतो दांतो उपरत तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मनेव आत्मानं पश्येत, ऐसा उपनिषद भाष्य ने लिखा है। कि साधक को शांत दांत उपरत तितिक्षु समाहित हो करके इस ब्रह्म विद्या का श्रवण करना चाहिए तो हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां शांत दांत उपरति आदि से युक्त हो, उसके लिए मंगलाचरण की बड़ी आवश्यकता होती है। मंगलाचरण से हमारे चित्त को स्थिर और शांत करके और फिर उसका विचार चिंतन हम लोग करते हैं। यही कारण है कि पहले मंगलाचरण के द्वारा माने शांति पाठ के द्वारा इस उपनिषद का प्रारंभ होता है। इस उपनिषद का जो शांति पाठ है मंगलाचरण रूप से जो उपस्थित होता है वो ऐसा मंत्र है, यदि जानकारी और प्रसिद्धि की दृष्टि से कहें तो सड़क छाप मंत्र है। हाँ, प्राय प्राय जितने भी श्रोता हैं सबको याद होगा ओम पूर्णमदः पूर्णमेदम, क्योंकि आगे और पीछे इसी मंत्र को बोला जाता है। लेकिन अर्थ की दृष्टि से देखो तो ऐसा अद्भुत मंत्र है महाराज, बड़े बड़े चिंतकों को भी चौंकाने देने वाला मंत्र है। क्या अद्भुत इस मंत्र का अर्थ है, जिस मंत्र का अर्थ आज तो मैं आपके सामने निवेदन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी ब्रह्मचारी जी का एक भजन आपको सुनना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे प्रियात्मा ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य जी का भजन सुनना चाहते हैं। वहां जेविंद नगर में भी देखा कि कई लोग इस दृष्टि से आते हैं कि ब्रह्मचारी जी का भजन सुनेंगे। गत वर्ष यहां भी लोगों ने बहुत पसंद किया था, ईश्वर ने कंठ में सरस्वती दी है, तो प्रतिदिन एक भजन इनके द्वारा आप लोग श्रवण करेंगे और ठीक टाइम से समय से अपना प्रवचन कर्म संपन्न हो, इसके लिए जो मंगलाचरण का अद्भुत जो रूप है उसको एक मंगलाचरण का उच्चारण कर ले और कल से फिर इस कर्म को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।